नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। एयरटेल बिजनेस टेलीकॉम कंपनी ने अपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स समाधानों के जरिए 2 करोड़ से अधिक उपकरणों को जोड़ा है। भारतीय एयरटेल ने मंगलवार को ये जानकारी दी। उसने कहा कि एयरटेल बिजनेस ऐसा करने वाली देश की पहली ICT सेवा प्रदाता बन गई। एयरटेल बिजनेस टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल की थोक कारोबार इकाई है। एयरटेल IoT, ऑटोमोबाइल, ऊर्जा, उपयोगिता, लॉजिस्टिक्स, वित्तीय सेवाओं, विनिर्माण और अन्य उद्योगों को एक सुरक्षित और निजी नेटवर्क के साथ ग्राहकों के डेटा को भेजने की सुविधा देती है। एयरटेल बिजनेस के CEO गणेश लक्ष्मी नारायण ने एक बयान में कहा, IoT भारत के डिजिटल विकास यात्रा में एक प्रमुख स्तंभ है। हमें अपने मंच पर 2 करोड़ उपकरणों को जोड़ने की खुशी है। शिक्षा क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी बायजूस के निवेशक प्रोसेस NV ने मंगलवार को कहा कि संकटग्रस्त कंपनी की शासन संरचना पर्याप्त विकसित नहीं हुई थी। प्रोसेस ने अपने साथ ही कहा कि कंपनी में उसके पूर्व निदेशक के बार बार प्रयासों के बावजूद नियमित रूप से सलाह की उपेक्षा की गई। प्रोसेस ने इस साल बायजूस का मूल्यांकन 22 अरब अमेरिकी डॉलर से घटाकर 5.1 अरब अमेरिकी डॉलर कर दिया था। उसने कहा कि उसके निदेशक ने पिछले महीने बायजूस के बोर्ड से हटने का निर्णय इसलिए किया क्योंकि वह कंपनी और उसके हितधारकों के दीर्घकालिक हितों की रक्षा करने के अपने कर्तव्य को पूरा करने में असमर्थ थे। बायजू के प्रवक्ता ने कहा, हमने अपने मूल्यवान निवेशकों की टिप्पणियों पर ध्यान दिया है। हमने अपने शेयरधारकों को कॉर्पोरेट प्रशासन और वित्तीय सूचना देने में किए गए सुधार के बारे में बताया है। L&T ने मंगलवार को कहा कि उसे देश और विदेश में बिजली पारेषण और वितरण खंड में 1000 करोड़ रुपए से 2500 करोड़ रुपए तक के ठेके मिले हैं। बुनियादी ढांचा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि उसे ये ठेके भारत और विदेश में मिले हैं। कंपनी ने कहा कि उसकी रक्षा L&T कंस्ट्रक्शन को अपने बिजली पारेषण और वितरण व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण ठेके मिले हैं। घरेलू मोर्चे पर ये ठेके गुजरात और झारखंड में मिले हैं। विदेश में ठेके सऊदी अरब और मलेशिया से संबंधित हैं। कंपनी ने इन ठेकों के मूल्य का खुलासा नहीं किया, लेकिन उसके परियोजना वर्गीकरण के अनुसार इनकी राशि 1000 करोड़ रुपए से 2500 करोड़ रुपए के बीच में है। विमानन नियामक DGCA ने स्पाइसजेट को अपनी बढ़ी हुई निगरानी व्यवस्था से हटा दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को ये जानकारी दी। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर रही एयरलाइन को हाल ही में बढ़ी हुई निगरानी में रखा गया था। DGCA के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अपर्याप्त रखरखाव और पिछले साल मॉनसून के दौरान हुई घटनाओं के मद्देनजर स्पाइसजेट को बढ़ी हुई निगरानी में रखा गया था। अधिकारी ने कहा, ऐसे में पूरे भारत में 11 स्थानों पर बोइंग 737 और बॉम्बिडियर DHC Q400 विमानों के बेड़े की 51 जांच की गई। इस दौरान कुल 23 विमानों का निरीक्षण किया गया। DGCA दलों ने 95 टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि निष्कर्ष सामान्य प्रकृति के थे और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने उन्हें महत्वपूर्ण नहीं माना। अधिकारी ने कहा, DGCA दिशा निर्देशों के अनुसार टिप्पणियों पर एयरलाइन ने उचित कार्रवाई की, जिसके चलते स्पाइसजेट को DGCA की बढ़ी हुई निगरानी व्यवस्था से हटा दिया गया। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी TVS क्रेडिट सर्विसेज लिमिटेड ने मंगलवार को बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 40.9% बढ़कर 117 करोड़ रुपए हो गया। TVS क्रेडिट सर्विसेज ने पिछले वर्ष की इसी तिमाही के दौरान 83 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। समीक्षाधीन तिमाही में कंपनी की कुल आय सालाना आधार पर 868 करोड़ रुपए से बढ़कर 1353 करोड़ रुपए हो गई। इस दौरान प्रबंधन के तहत संपत्ति बढ़कर 21924 करोड़ रुपए हो गई। कपड़ा सचिव रचना शाह ने मंगलवार को कहा कि कपड़ा मंत्रालय जल्द ही परिधानों के लिए इंडिया साइज वाले मानकों को पेश करेगा। इन मानकों को भारतीय शारीरिक संरचना के अनुसार तैयार किया गया है। इन मानकों के आने के बाद भारतीय ऐसे कपड़ों को खरीद सकेंगे जो उनके लिए बेहतर फिट होंगे। इस समय भारत में उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू ब्रांड छोटे, मध्यम और बड़े साइज वाले कपड़ों के लिए अमेरिका या ब्रिटेन के माप का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि पश्चिमी शारीरिक संरचना में ऊंचाई, वजन या शरीर के अंगों की विशिष्ट माप भारतीयों से अलग होती है, जिसके चलते कभी कभी उन्हें फिटिंग संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मोटरसाइकिल विनिर्माता रॉयल एनफील्ड ने मंगलवार को कहा कि उसकी हंटर 350 मॉडल ने पेशकश के एक साल से भी कम समय में 2 लाख इकाई की कुल बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। रॉयल एनफील्ड ने एक बयान में कहा कि कंपनी ने अगस्त 2022 में हंटर 350 मॉडल पेश किया था। इस मॉडल ने फरवरी 2023 में 1 लाख इकाई की बिक्री का आंकड़ा छू लिया और इसके केवल 5 महीनों में अगली 1 लाख इकाई की बिक्री दर्ज की। रॉयल एनफील्ड के CEO बी गोविंद राजन ने कहा, हमें गर्व है कि पेशकश के एक साल से भी कम समय में हंटर ने दुनिया भर में 2 लाख से अधिक सवारियों को जोड़ लिया है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी हंटर 350 की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। विस्तार से खबर पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।